भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री राधे। तो आज के इस भक्ति वेदांता आई हॉस्पिटल के 8वें वर्षगांठ में आप सबका स्वागत है। आइए आप लोग आ गए। माता जी हाँ, हरे कृष्ण। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, क्योंकि हर महान चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है। कोई भी महान चीज़ शुरू से ही महान नहीं होती, और अक्सर जो शुरू में महान होती है वो बाद में ख़त्म हो जाती है। इसलिए छोटे पैमाने पर किसी भी महान कार्य की शुरुआत करना बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को मुझे यहाँ पर बरसाना के लोग भी हैं और हॉस्पिस के लोग भी हैं, तो सब लोगों को शायद इतिहास पता नहीं होगा। 1992 में हम लोग यहाँ पर घूमते घूमते यात्रा करने आए थे। 1992 नहीं, 1991 में दिसंबर के आसपास, और उसके पहले हम लोग वहाँ पर अपने घर के पास में आई कैंप करते थे और 25-25 ऑपरेशन करते थे गवर्नमेंट के अस्पताल में पालघर ज़िले में। तो यहाँ पर घूमते घूमते आए थे परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ में, और आप सब जानते हैं हमारा यहाँ पर एक सुंदर मित्र परिवार है, ब्रजवासी परिवार है, जो जिसमें पंडित रामजीलाल शास्त्री हैं, उसमें देव कृष्ण लाला जी भी हैं, उनके बहनें हैं, और रमेश बाबाजी महाराज पर्वत पर विराजमान हैं, राधाकांत भैया जी रहते हैं, ऐसा एक पूरा बड़ा परिवार है। प्रकाश सिंह के पुत्र राधाकांत जी, वो महाराज जी हमारे यहाँ पर एक 1971 में जब बालक अवस्था में थे तो 6 महीने यहाँ पर रहे, तो उनका बहुत बड़ा परिचय है। उनका किताब जो है ना, अनोखी अनोखा सफ़र, जर्नी होम, आप लोगों ने पढ़ा नहीं पता नहीं है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें ये इतिहास दिया हुआ है कि कैसे हमारे गुरुदेव भगवान को ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, वहाँ से ढूंढते ढूंढते बरसाना आए और मान मंदिर पर रहे, वहाँ पर डाकुओं का निवास था उस समय। तो हमारे गुरुदेव को भगवान के विषय में जो तीव्र साक्षात्कार हुए वो मान मंदिर के ऊपर, इसलिए मान मंदिर के वो बहुत ऋणी हैं। और जब मान मंदिर से फिर जो जीवन में खोजना था वो मिल गया उनको, उसके बाद वो चले गए, और उसके बाद में उनकी दीक्षा प्रभुपाद जी महाराज से हुई है। तो जब जा रहे थे यहाँ से तो उनके मन में ऐसा विचार था कि बरसाना धाम, मान मंदिर धाम से मुझे भगवान के विषय में इतने अमूल्य और हृदय से साक्षात्कार हुए हैं, तो यहाँ के लिए कुछ सेवा होनी चाहिए राधा रानी के प्रति, प्रतिसाद के रूप में, हाँ, कृतज्ञता को व्यक्त करने के भाव से कुछ होना चाहिए। तो जब हम लोग घूमते घूमते फिर 91 में यहाँ पर आए थे, सब डॉक्टर्स ही थे और कोई नहीं था उसके अंदर, और बहुत कुछ 11-12 लोग थे। आजकल के लोगों को विश्वास नहीं होगा कि परम पूज्य राधानाथ महाराज के हाथ में केवल 11 लोग यात्रा कर रहे हैं। अभी खाली पूछते हैं कितने हज़ार लोग जा रहे हैं, कितने हज़ार आएंगे, ऐसे पूछते हैं। तो वो ज़माना था जब हम लोग खाली 11 लोग घूम रहे थे। तो जब बरसाने उनके घर में पहुँचे, रोटी वोटी पाई, तो चर्चा हुई क्या करते हो आप लोग, तुम्हारा ने बोला ये सब डॉक्टर हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा हमारे पास भी कैंप क्यों नहीं करते हो। तो फिर हमने यहाँ पर उसी समय उसी मीटिंग में तय किया कि हम लोग प्लान करके आएंगे, और तुरंत बॉम्बे जाके पूरा योजना बनाया। और 1992 मतलब 2 महीने के बाद में यहाँ पर उस समय का बड़ा कैंप लगाया। अभी आप उसको भी हंसेंगे क्योंकि हम लोग 25 के ऑपरेशन करते थे उस समय। तो यहाँ पर जो पहला कैंप लगाया हमने उसमें 185 ऑपरेशन किए हम लोग ने। और आजकल तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन है, उस समय 4 दिन एडमिट करना पड़ता था प्री ऑपरेटिव, फिर 4 दिन पोस्ट ऑपरेटिव रखना पड़ता था, मतलब मरीज अंदर आ गया 10 दिन के बाहर ही बाहर निकलेगा वो आपके पास, ऐसा नियम था। टाँका निकालना पड़ता था, टाँका डालना पड़ता था, और बहुत सारे नियम थे। तो 15 जनवरी को हमको तो पता नहीं, मुंबई के लोगों ने जनवरी का मौसम अच्छा रहता है मुंबई में, तो हमने बोला जनवरी में कैंप करते हैं। जनवरी में मतलब बर्फीली ठंड दिखती, इतनी भयंकर ठंडी, क्या बताएं आपको। हमारे जो लैटरिन थे वो हम लोगों ने खेत में बनाए थे, गड्ढा बनाकर टाट के लैटरिन बनाए थे। तो सब लोग टाट के लैटरिन में जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ जाकर थोड़ा गर्म पानी ले रहे हैं, वहाँ पर टाट के कमरे में स्नान कर रहे हैं, ऐसा अद्भुत नज़ारा था। और 68 लोग लाला जी के घर पर ही विराजमान थे, सोच सकते हैं आप। अभी तो घर बहुत बड़ा हो गया है, उसमें तो आधा भी नहीं था उस समय। उसमें हम लोग 68 लोगों ने आक्रमण किया और रहे हम लोग टाट के घर बांधे मैंने सबके लिए, टाट ऊपर करेंगे तो घर अंदर, और स्नान करना है तो बाहर एक बैठेगा पहरेदार, वही अंदर मत जाओ स्नान कर रहा है कोई, वो आएगा दूसरा अंदर जाएगा। ऐसा अद्भुत कैंप रहा वो, और 185 लोगों को हमने एक साथ डिस्चार्ज किया सरकारी अस्पताल में। और मैंने वो अस्पताल के बाउंड्री के ऊपर चढ़ के ग्रुप फोटो निकाला था क्योंकि मैं फोटोग्राफर भी हूँ, मेरे पास 2-2 कैमरे लगा कर मैं फ़ोटो निकालता था, एक स्लाइड का और एक फोटोग्राफ का। तो सबको पूछता हूँ मैं ये फ़ोटो में मैं किधर हूँ, तो ढूंढते रहते हो। मैंने कहा वो फ़ोटो मैंने निकाला है, मैं कैसे आऊँगा फ़ोटो में ऐसी स्थिति थी, बहुत सुंदर। और आपको क्या कहें, उस कैंप में परम पूज्य राधानाथ महाराज हर दिन यहाँ रहे और हर दिन उन्होंने प्रवचन दिया। हर दिन उनके प्रवचन के बाद में कैंप शुरू होता था, बोलो, एवरी सिंगल डे, पूरे दिन 15 दिन यहाँ पर रहे। और उसके बाद में जो यात्रा हुई, उन्होंने कहा था कि यात्रा होनी चाहिए, उसके बाद में जिन्होंने सेवा किया उनके लिए यात्रा होनी चाहिए, तो उन्होंने यात्रा दिया, खुद यात्रा दिया। और अभी भी याद है हमको, हम लोग टेर कदम गए थे, उद्धव क्यारी गए थे, वहाँ पर इतना पानी था, करोड़ों कांटे थे पानी के अंदर, और 2.5 घंटे लगे थे हमको उधर पहुँचने के लिए। 2.5 घंटे कहाँ से, मेन रोड से उद्धव क्यारी की जगह पर 2.5 घंटे लगे थे। इतने कांटे, हर कदम पे 5-5, 6-6 कांटे घुसते थे, फिर निकालना, फिर कदम रखना, फिर निकालना, फिर कदम रखना, फिर महाराज के निकालना, अपने निकालना, ऐसे करते करते हम लोग शाम को वहाँ पहुँच गए थे। तो पहली यात्रा भी परम पूज्य राधानाथ महाराज ने दी थी, इतना सुंदर अनुभव था वो। फिर उसके बाद में 2002 में हमारे डॉक्टर गौरांग सुंदर प्रभु, रंजीत वागले उस समय और उनकी पत्नी नीला वागले, ये तभी चित्रकूट में थे, वहाँ पर एक्सपीरियंस ले रहे थे। तो वहाँ से फ़ोन पे हमने भक्ति वेदांत में उनके संपर्क करके 2002 में एक बड़ा कैंप अरेंज किया। फिर उसके बाद में वो कैंप किया इन्होंने, वहाँ से आकर किया, हाँ, और 2002 में इन्होंने फिर वहाँ से छोड़ के भक्ति वेदांत में ज्वाइन कर लिया दोनों पति पत्नी ने। और इस तरह से फिर 2002 से लगातार वो कैंप चलता रहा, फिर 220, फिर 380, फिर 485, फिर 545, ऐसे करते 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 आज वो 1000 लास्ट ईयर मन में कितने हुए, 1181 ऑपरेशन हुए कैंप के पीरियड में। तो कभी कभी यकीन नहीं होता है कि शुरुआत कैसे की थी और क्या हमारी क्षमता थी और कैसे कैसे वो बढ़ाया। तो हर कैंप में ऐसे अद्भुत अनुभव रहे हैं। एक कैंप में एक ऑपरेशन औरत आई थी 101 साल की, और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया उसका, अच्छी तरह दृष्टि प्राप्त हो गई और वो चार दिन रहने का था, तो दो दिन के बाद वो गुजर गई। तो बोला क्या हो गया, उसको लंग की बीमारी थी तो उसकी वजह से वो गुजर गई। वो तो मुझे सुबह सुबह 7 बजे मैं रूम पे था तो नॉक किया, प्रभु जी उठो इमरजेंसी हो गई। बोला क्या हो गया, बोले मरीज का देहांत हो गया। तो मैंने कहा कि भाई मरीज कैंप का इंचार्ज मैं हूँ, तो उसकी बॉडी को लेकर मुझे जाना है, अगर पत्थर पड़ने हैं डंडा पड़ना है तो मुझे लेना है क्योंकि मैं सबका जिम्मेदार हूँ। तो मैं तुरंत उठा और डेड बॉडी को लेकर हम गाँव में गए। अभी देखो मन में क्या क्या विचार चल रहा है कि गाँव के सारे लोग आएंगे, गाली गलौज करेंगे, लात मारेंगे, मुक्का मारेंगे, वर पता नहीं जिंदा गाड़ देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, यू डोंट नो। क्योंकि वो क्या कहेंगे कि जिंदा मरीज को लेके गए थे आप और मुर्दा को लेके आए, क्या किया आपने उधर उसका। और मैं ऐसे सोच सोच के ठीक है भाई, राजा रानी की जो भी इच्छा है, हम लोग सेवा कर रहे हैं, उनकी क्या इच्छा देखेंगे। तो गाँव में पहुँचे तो उसका जो बुढ़ा पति था ना माता जी का, वो आया ऐसे गले लगाया मुझे आके। मैंने कहा महाराज जी आप माफ़ करना मुझे, अब आपकी पत्नी को हम उसका शव लेकर आए हैं। मैंने कोई बात नहीं बेटा, वो तो राधा रानी की लीला है, वो कौन किसको कब ले जाना है वो राधा रानी के हाथ में है, आपने तो सेवा किया है, दृष्टि दिया उसको, कुछ चिंता मत करना बेटा, ये बैठो बैठो, रस्सी काट बिछाया, बोलते चाय वाय पियो सब। मैं इतना दंग रह गया, अगर शहर में ऐसा होता तो हम लोग आज जिंदा नहीं रहते। मैं क्या, मेरे साथ में जो गए सब वो मर जाते, इतना पीटते उनको लोग, एक ही बात पर जिंदा ले गए थे मुर्दा लेके आए। उसमें मैं इतना गदगद हो गया था कि ब्रजवासी लोग कितने प्रेम और समझदार होते हैं, भले दिखने में अनपढ़ हो या MSc BSc MBBS नहीं किया होगा, लेकिन सच्चे विद्वान होते हो। उनको अनुभूति इस बात की कि मारने वाला कोई इंसान नहीं होता है, भगवान ही होते हैं, जन्म देने वाले भी वही होते हैं, मृत्यु के कारण भी वही होते हैं, और जो भी करते हैं मृत्यु या जन्म अच्छा ही करते हैं। इतना बड़ा साक्षात्कार ज्ञान उनके मन में हृदय में होता है, मुझे बहुत गदगद अनुभव हुआ उस समय। और ऐसे बहुत सारे अनुभव कैंप में आए, एक कैंप में नहीं सारे जनरेटर बंद पड़ गए थे। हाँ अभी हमारा कैंप पूरा जनरेटर पर चलता था, और जनरेटर की सब कॉइल उड़ गई थी, हम लोग 2 बजे तक रात को मीटिंग कर रहे थे, कैसे कहाँ से कॉइल लाए। अभी दिल्ली में चांदनी चौक में कोई भक्त हमारे घूम रहे थे उस समय हमारे फ़ोन के ऊपर कि जाओ ढूंढो कोई दुकान खोल के कॉइल लेके आओ, कॉइल नहीं मिल रही थी। कैसे भी करके 2 बजे तक सब लोग पेशेंट जमा हो रहे हैं, पहले वाले भी हैं, नए भी आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, क्या करें अभी समझ में नहीं आ रहा है। और खनगोर वर्षा हो रही थी, बर्फीली ठंड थी उस समय, और हमने 2 बजे मीटिंग समाप्त किया। और समाप्त करते करते एक फ़ोन आया, मुझे फ़ोन आया कि प्रभु जी वृंदावन से मंदिर से फ़ोन आया, प्रभु जी चाइना से 40 डिवोटी आए हैं। माता जी हरे कृष्णा, चाइना से 40 डिवोटी आए हैं और आप उनको यात्रा देंगे क्या, हमारे आपको विनती है कि हमने सुना है कि आप बरसाने की यात्रा देते हो, आप कृपा करके उनको यात्रा दिला दो। मैंने कहा प्रभु जी मेरा कैंप बंद पड़ा है, इधर सब जनरेटर फूक गए हैं, पेशेंट बैठे हुए, डॉक्टर हाथ में हाथ रख के बैठे हैं, मैं नहीं यात्रा कर सकता, मेरा कैंप चलेगा तो मैं देखूंगा उसको। और मैं ऐसे करके मना करके सो गया। 4 बजे तक जाग आई मुझे, 2 घंटे के बाद में मुझे लगा अरे चाइना से डिवोटी आ रहे हैं। सोचो आप, कम्युनिस्ट देश है, उधर नाम भी भगवान का लेना अलाउड नहीं है, इधर वो जिंदगी में बहुत गरीब भक्त होते हैं, वो सब लोग चाइना से पैसा इकट्ठा करके एक ही बार यात्रा में आते हैं और एक ही बार वृंदावन जगन्नाथपुरी मायापुर जो भी करना है कर लेते हैं, एक ही बार लाइफ में धोती कुर्ता पहनते हैं, बाकी सब यही छोड़ के जाते हैं। इतना वहाँ पर आतंक है, आज भी जानते हो आप हांगकॉन्ग में क्या हो रहा है, उधर इतना आतंक बना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मैंने सोचा कि चाइना के डिवोटीज राधा रानी के धाम में आना चाहते हैं और मुझे विनती कर रहे हैं कि इनको घुमाओ और मैं मना कर रहा हूँ, और ये अच्छा नहीं है। तो 4 बजे मैंने उनको वापस फ़ोन किया, मैंने प्रभु जी भेजो आप उनको, कोई चिंता मत करना, हम देख लेंगे कैंप का क्या करना है। और वो उस समय इतनी ठंड थी, क्या कहें आपको, तो सारे चाइना के डिवोटीज नंगे पैर आए थे, सब जगह पानी पानी था, बारिश भी गिरी थी, ये भयंकर ठंड थी, और सारे चाइना के भक्त जो है ना वो नंगे पैर में आए वापस। नाश्ता किया और हमने उनको पूरा बरसाना घुमाया। क्या बताऊँ आपको, मेरे आज तक की इतनी यात्राओं में कभी भी मैंने किसी को, एक आध दो आदमी रोते हैं ऐसे, लेकिन सारे, देखो मैं अभी कथा कर रहा हूँ, सारे लोग रो रहे हैं, ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन उस यात्रा में जब मैं यात्रा कर रहा था, यहाँ पर कैंप की तकलीफ चल रही थी, यहाँ पर यात्रा दे रहा हूँ मैं, सारे चाइनीज डिवोटी ना फूट फूट कर रो रहे थे, कथा फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि उनके लिए वो पहली और आखिरी कथा थी उस जगह की, दोबारा वो आने वाले नहीं थे वहाँ पर। अगर मान मंदिर में बैठे हैं तो वो लास्ट फर्स्ट कथा है उनकी, अगर श्रीजी मंदिर में बैठे हैं वो फर्स्ट और लास्ट कथा है, अगर दान बिहारी में बैठे हैं तो फर्स्ट और लास्ट कथा है, तो मोरकुटी में बैठे हैं तो फर्स्ट और लास्ट कथा है। तो उनके लिए, उनको कितनी अमूल्य थी उनके लिए वो, वहाँ पर पहुँचना और वहाँ बैठ कर कथा सुनने का अवसर कब प्राप्त होगा, ये सुनकर वो रो रहे थे सब लोग। और मान मंदिर की कथा में मैंने, मुझे अभी भी याद है, मैंने उनको परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में कथा सुनाई, क्योंकि सभी लोग उनके ही शिष्य थे उसमें। तमाल कृष्ण महाराज ने बहुत मेहनत से चाइना में उस पर प्रचार किया था, और छुप छुप के ड्रेस बदल करके पैंट शर्ट पहन के प्रचार किया था, और ये सारे भक्त लोग उसमें से आए थे। तो तमाल कृष्ण की जब कहानियाँ मैंने सुनाई, मेरा उनका संबंध क्या था, तो वो इतने फूट फूट कर रोए, क्या बताओ आपको, तो ऐसा अद्भुत अनुभव आया कैंप में। तो इस प्रकार से हमारे कैंप चलते रहे चलते रहे, हर साल लोग निकलते निकलते भी, सर हमारा कभी करेंगे, तो हम जा रहे हैं अभी, अगली बार करेंगे, एक साल के बाद आएंगे, तब तक आंख रहे कि ना रहे क्या मालूम। तो 2007 में 2003-2004 के आसपास ये आश्रम तैयार हो गया, तो यहाँ पर हम लोग रहना शुरू कर दिया। और वो बिदानी भवन है ना, अभी टूट गया ना, वो टूट गया ना बिदानी भवन, कितना लोगों को मालूम है, अच्छा आश्रम था वहाँ पर। हमने ऑपरेशन थिएटर हम लोग सेट करते थे आश्रम के अंदर, और ऑपरेट करते थे वहाँ पर। फिर सरकारी अस्पताल में भी ऑपरेशन कई साल किए हमने। फिर वो है ना मोदी भवन, अभी क्या नाम है उसका, गिरिराज भवन, उधर भी हम लोग ने कैंप लगाए हैं बहुत सारे। ये जो इंटर कॉलेज है ना, राधा बिहार इंटर कॉलेज, इसके अंदर भी हमने ऑपरेशन थिएटर बना के कैंप किए हुए हैं बहुत जगह पर। और एक वो ब्रजेश्वरी स्कूल है ना यहाँ पर, कन्या विद्यालय, उधर भी हमने कैंप लगाए हैं। ऐसे बहुत जगह कैंप लगा जाते हैं, जगह फिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये लोगों ने देखा कि अरे लोग बहुत भटक रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है बहुत। तो बाबूजी जो हमारे हैं, मुरलीधर मल्होत्रा जी, उन्होंने कहा कि आप इतना भटक क्यों रहे हो, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल बांटे आपके लिए, आप डिज़ाइन दो हम बांध देंगे आपके लिए। तो कितनी अद्भुत बात है ये, कोई कह रहा है कि आपका डिज़ाइन हमारा पैसा और हम आपको हॉस्पिटल बांध के देंगे। तो उन्होंने इतने प्रेम से 2007 में ये जो आप बैठे ना आज, वो हिस्सा बनाया ग्राउंड फ्लोर वाला, और हमको दे दिया फ्री में कि आप खाली सेवा करो, बस एक ही वादा करो, नो रेंट नो डिपॉजिट नो खर्चा बनाने वाला, आपने जो डिज़ाइन दिया वैसे हमने बनवाया है, आप यहाँ पर अपना काम शुरू करो। तो 2007 में हमने कहा कि हम लोग तो फुल टाइम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, हम लोग ना हफ्ते महीने में एक बार एक हफ्ता आएंगे और मंथली कैंप करेंगे, साल का कैंप चलता रहेगा। तो मैं हमेशा एक महीने से एक तारीख से सात तारीख तक का टिकट सबका निकालता था, और मैं भी आता था उसके अंदर, एक से सात फिक्स था हमारा, दिन कोई भी हो एक से सात फिक्स था। तो 10 मंथली कैंप करते थे और एक एनुअल कैंप करते थे, इस प्रकार से कोशिश करते थे। लेकिन मंथली कैंप के बाद भी लोग बोलते थे, सर हमारा कभी होगा, सर हम तो जा रहे हैं, सात तारीख हो गई अभी, वो बाकी। उन्होंने देखा कि बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। हाँ, तो तभी नीला बागले मैडम और डॉक्टर प्रभु जी यहाँ पर आते थे हर महीने में। तो 2007 के बाद में 2011 निकला, उसके बाद हर साल कैंप हो रहा है, महीने का कैंप भी चल रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसके बाद में फिर मुंबई में बहुत हमारी मीटिंग हुई, अभी ना इसको कुछ सुझाव निकलना चाहिए, कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो डॉक्टर निकुंज विहार की माता जी और गौरव सुंदर प्रभु ने ये तय किया कि हम लोग अभी बॉम्बे छोड़ेंगे और बरसाना आके फुल टाइम बसेंगे। तो वो सुनकर हमारे जो मंगल कामती है वो भी एकदम इंस्पायर हो गए, फिर सचिन भी इंस्पायर हो गए, और कौन था उस समय, और तीसरा कौन था, हाँ संतोष मा कौन कोरडे, और भी एक व्यक्ति था जो संजय पांडे, हाँ ये सब लोग वहाँ से इंस्पायर हो गए, परिवार के साथ शिफ्ट हो गए इधर। और ये हमने 6 अक्टूबर 2011 तारीख को दशहरा था, उस दिन इसका उद्घाटन किया हम लोग ने। मुझे पता नहीं कौन चीफ गेस्ट था उस समय, कोई थे हमारे भक्त आए थे, और छोटे खाने प्रोग्राम हुआ छोटा सा, और हमने कैंप शुरू किया। फिर मंथली कैंप बंद हो गया क्योंकि डेली कैंप, डेली सेवा शुरू हो गई। अभी क्या स्थिति है, 2011 में हमने 2005 से हमने यहाँ पर जगह ढूंढना आरंभ किया था कि अस्पताल होना चाहिए, और उस चक्र में मैंने बरसाना नंदगांव क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारा है, हर एक जगह का मैंने क्या कहते हैं ना उसको भाव किया है, नेगोशिएशन नंदगांव तक वो पैनाली गांव में भी जगह देखा था हमने, और वो जो गांव है ना क्या नाम उसका पिसाया, पिसाया में भी एक व्यक्ति की जगह देखी थी, खायरा में भी जगह देखी थी, हर जगह जगह देखी थी। तो हमने कहा था हमको बाहर घूमना नहीं है, हमको बरसाने में ही जगह चाहिए, राधा रानी के चरणों में ही करना है हमको जगह, नंदगांव में भी नहीं करना है। तो हमारी प्रार्थना चलती रही और राधा रानी हमारी सुन ली फिर एक बार। और उसका ना आपको एक समझना ज़रूरी है कि 2005 से हम लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत जगह ढूंढी, बहुत जगह ढूंढी, इधर वो क्या नाम संकेत गांव है ना वहाँ, तो उधर भी जगह थी देखी थी हमने हाईवे पे लगे हुए, गाजीपुर में देखी थी हाईवे को लग के देखी थी, सब हो गया था हमारा काम, लेकिन जब बन नहीं पा रही थी बात। लेकिन एक बात समझने लायक है कि जिस दिन डॉक्टर निकुंज बिहारी माता जी और डॉक्टर गौरांग सुंदर प्रभु और मंगल कामती और सचिन ये सब टीम यहाँ पर आ गई और रहना शुरू किया, उसी महीने में अक्टूबर 2000 के एंड में 2.5 एकड़ जगह हो गई हमारी। और ये हमारा अनुमान था कि जब तक वहाँ जाके हम लोग बसते नहीं हैं तब तक राधा रानी जगह नहीं देगी हमको, और ये सच हुआ। उसी महीने में जो यहाँ सेटल हो रहे हैं यहाँ पर ये लोग, उतने में 2.5 एकड़ जगह हो गई हमारी। और फिर 3-4 महीने चले गए, अगला साल आ गया, कैंप हो गया, तो हमने कहा कि 2.5 एकड़ तो बहुत कम जगह है, आगे कुछ बढ़ाना होगा तो बहुत कम पड़ेगा। तो मार्च में, मार्च 11 तारीख को दूसरी 2.5 एकड़ जगह हो गई, इस तरह से 5 एकड़ जगह हो गई। मैंने और निकुंज बिहारी माता जी ने, अभी भी हमको याद है कि वो छाता वाले तहसील में जाकर पूरा उसका, वो युधिष्ठिर गौड़ जी महाराज हमारे रणवारी वाले वकील युधिष्ठिर गौड़, उनके साथ में पर सेटिंग करके पूरा सा पर्चे वर्चे सब बनाए थे और पूरा डिटेल में उसका काम हुआ था। और 2011 से बाद में आज 2019 हो गया है, यहाँ क्या स्थिति है अभी? ये स्थिति ऐसी है कि मरीज़ दिन ब दिन इतने बढ़ रहे हैं कि खड़े रहने को जगह नहीं है, सब लोग धूप में खड़े हैं या तो ठंड में खड़े हैं, ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में धूप में खड़े हैं, इतनी मोटरसाइकिल लगी हुई है, इतने बड़े बूढ़े को कोई लेके आ रहा है, कोई अंधे थोड़े जवान बच्चे होते हैं, सब लोग बूढ़े होते हैं, तो उनके साथ में कोई पोता या बेटा या बेटी सब आ रहे हैं, ट्रैक्टर से आ रहे हैं, बैलगाड़ी से आ रहे हैं या और मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। तो अस्पताल चाहिए हमको, जगह तो हो गई है, जिन्होंने अस्पताल के लिए मदद किया था वो भी पूछ रहे हैं क्या हुआ, जगह तो दे के रखी है, क्या हुआ क्या हुआ। तो अभी हम लोग डेस्परेट हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो सेवा करते हैं वो सेवा चली रही है और 99.9% क्या होता है सेवा फ्री ऑफ चार्ज होता है, उसमें कोई इनकम नहीं है। कोई लोग आके प्राइवेट में कर लेते हैं लेकिन प्राइवेट का जितना काम है उतना वो फ्री वाला काम उससे कवर नहीं होता है। तो यहाँ पर पैसे भेजने पड़ते हैं मुंबई से, इसलिए इतना अगर घाटा हो रहा है तो फिर नए अस्पताल का पैसा कहाँ से लाएंगे, ये भी घाटा पूरा करना है, उधर भी बांधना है करोड़ों को अस्पताल। तो इसलिए बातें हर साल अगले साल अगले साल अगले साल अगले साल चलती रही। फिर वो लाला जी की कन्या का विवाह हो गया भानुजा का, उस समय मैं राधा रानी के पास गया था, बोला राधा रानी अभी आपको बांधना है तो ये आपके ही जिम्मे है, ये आपकी सेवा में है, हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, आप भक्ति वेदांत अस्पताल का नया अस्पताल बनने के पहले इसका उद्घाटन कर दीजिए ऐसा हमारे अभी भी रिक्वेस्ट उधर दर्ज है, उन्होंने साइन करके एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट, तो पता नहीं कब पूरी करते हैं। और भक्ति वेदांत का बिल्डिंग जो है वो अभी 5वें माले तक हो गया है और 4 माला हो जाएगा, उसके बाद में उसका इंटीरियर होगा, 2021 तक उसका उद्घाटन का प्लान है हमारा भक्ति वेदांत में मुंबई में। लेकिन हमारे अभी भी रिक्वेस्ट है क्योंकि क्या नामुमकिन है बताओ आप, अगर राधा रानी चाहती है तो एक साल में अस्पताल खड़ा हो जाएगा, आज से अगर राधा रानी की दया से धन आता है तो एक साल के बाद में खड़ा हो जाएगा। और क्यों हम चाहते हैं इसको, क्योंकि आज की हमारी जो टीम है, आप लोग जो सेवा करते हो यहाँ पर, इसी टीम के साथ में हम दुगने ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, एक आध दो लगेगा एक्स्ट्रा, एक आध दो एक्स्ट्रा लेके इसी टीम के साथ में इतने ही डॉक्टर के साथ में हम दुगने ऑपरेशन कर सकते हैं, दिन में 70 से 80 ऑपरेशन हम कर सकते हैं, अगर 2 थिएटर होंगे, और एक साल में 17,500 ऑपरेशन कर सकते हैं। आप लोगों को ये सब गणित पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों बांधना चाहते हैं। अभी हम लोग हफ्ते में कितना करते हैं बताइए ऑपरेशंस, नब्बे से 100 आप हफ्ते में करते हो और एक 350 से 400 एक महीने में करते हो। इसी टीम के साथ अस्पताल आएगा हमारा और 4 थिएटर होंगे तो हम एक ही महीने में एक दिन में 70 कर सकते हैं, 280 एक हफ्ते में हो जाएंगे। नहीं कितने हो जाएंगे, 200 से नहीं 350 एक हफ्ते में हो जाएंगे और 4 हफ्ते के कितने होते हैं 1400 हो जाएंगे अब महीने के। इस तरह से साल में कितने हो गए आप गिनो, 15,000 से ऊपर ऑपरेशन हो जाएंगे हमारे किसी टीम के साथ, और टीम बढ़ाएंगे तो वो 20,000 हो जाएंगे। आज के तारीख में भी बरसाने क्षेत्र में जो हम लोग प्रचार करते हैं 120 गांव में, आज के तारीख में भी पर प्रतिवर्ष 5,000 लोग मोतियाबिंद के इलाज न मिलने के कारण अंधे हो जाते हैं, या तो उनको नॉलेज नहीं है, या तो नॉलेज है लेकिन सुविधा नहीं मिलती है उनको, या सुविधा है तो वहाँ पहुँचने का उनको साधन नहीं है उनके पास, और सुविधा है तो उसको पैसा पे करने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। इसलिए मजबूरी से 5,000 लोग बरसाना क्षेत्र में 120 गांव में एक साल में अंधे हो रहे हैं। तो हमारी क्या इच्छा है राधा रानी के चरणों में कि कोई भी ब्रजवासी जो है बिना मतलब के अंधा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ का इलाज कर सकते हैं उसका इलाज होना चाहिए, जिसका इलाज नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन जो इलाज करके दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं उनको दृष्टि मिलनी चाहिए। इस भाव से हम लोग ये अस्पताल खोलना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा इतिहास के साथ जुड़े रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए और भविष्य पर आंखें जमाए रखना चाहिए, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। जो इतिहास के अनुभव को कभी भूलता नहीं है, वर्तमान में चलता है और आंखें भविष्य में रखता है कि मुझे उस वहाँ पहुँचना है। तो हम सब लोग को ये गणित पता होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसके मुंह से बात निकलेगी और कौन सुनेगा और कौन आके उसको बांधेगा, वी डोंट नो। आप ये मत समझना अरे हम तो छोटे से लोग हैं, हमारे पास कौन बड़े लोग आएंगे। आप खाली अपना मुंह खोल के रखिए बस खाली और बोलते रहिए। तोता कैसा होता है, वो सुनने वाला हो या ना हो तोता अपनी बात बोलते रहता है। उसी तरह से ये सब जो मैंने आपको बताया है वो आप सब लोगों को बताते रहिए, ताकि आपकी जो प्रामाणिक नेक सेवा आप कर रहे हो हृदय से, यहाँ पर अद्भुत सेवा हो रही है। हाँ, जिस जैसे हमने शुरू किया था 25 से ऑपरेशन से, अभी वही हम लोग 1100 ऑपरेशन करते हैं कैंप में। तो ये सब अद्भुत चीज़ें हैं, ये हमको भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसे भी हो रहा है और कैसे हो रहा है ये सब, लेकिन हो रहा है। आज भी हम लोग जब कैंप में आते हैं ना, आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग खाली सेवा करते रहते हो मग्न रहते हो, लेकिन आज भी कैंप में आने तक यज्ञ करने तक हमारे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं होता है, और फिर भी हम लोग राधा रानी के भरोसे यज्ञ करते हैं और कैंप शुरू कर देते हैं। वो बम्बई की भाषा में क्या बोलते हैं, राम भरोसे चालू कर देते हैं उसको, और फिर कैंप के बीच में डोनेशन आते रहते हैं और कैंप के एंड तक सब पूरा हो जाता है, और कुछ कुछ बिल्स जो है वो कैंप के 1 महीने के बाद हम लोग पेमेंट करते हैं। और ये हर साल का अनुभव है, मैं तो कितनी बार ट्रेन में बैठा हूँ बिना 1 भी रुपये अकाउंट में होते हुए, लेकिन कैंप करना है, डोंट चैंट। तो इस प्रकार से आज तक का अनुभव है, मतलब क्या है, पूरी तरह से हम निर्भर राधा रानी के चरणों पर हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई धनवान कोई करोड़ रुपए का हमारे पास गुंजाइश नहीं है। लोगों को लगता है बरसाने में कि इनके पास पैसा तो सड़ रहा है, ऐसा मुझे सुनने में आया अभी अभी। उनको लोगों को लगता है कि इस्कॉन का अस्पताल है तो इनके पास पैसा सड़ रहा है, तो मुझे वो देखना है कहाँ सड़ रहा है, मुझे वहाँ से लेके आना है उसको। अगर किसी को पता हो तो बता देना, मुझे अभी के अभी ज़रूरत है। तो ये सब गलत फहमियाँ हैं, लेकिन हमको राधा रानी पे भरोसा है, हम उसी के भरोसे पे चलते हैं, उसी के धाम में आए हैं, उसी के धाम में पड़े हैं, उनको ही चरणों का सहारा लिया है और उनके ही विनती कर रहे हैं कि राधा रानी हम आपके सेवक हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में आपको अस्पताल बनाना है तो आप बना सकते हो, तो आप बना सकते हो, हम आपके लिए सेवा करने को तैयार। और वैसे भी हमको 27-28 साल में बहुत सेवा मिली है, उसमें कोई दुख नहीं है, बहुत तृप्ति है हृदय में। लेकिन ये अस्पताल क्यों बना रहे कि अगले 4-5 पीढ़ी तक यहाँ पर सभी भक्तों को सभी ब्रजवासियों को यहाँ पर सेवा मिलनी चाहिए, ब्रजवासियों के हाथ से आप जैसे लोगों के हाथ से सेवा होनी चाहिए और ब्रजवासियों को वो सेवा प्राप्त होनी चाहिए। और ब्रजवासी लोग जब अंधे होते हैं मोतियाबिंद से तो दृष्टि प्राप्त होने के बाद क्या करते हैं, टीवी देखते हैं कि पिक्चर देखते हैं कि यूट्यूब देखते हैं, नहीं वो सीधे मंदिर भागते हैं राधा रानी के, मंगला में भागते हैं, अरे इतने महीने हो गए दर्शन नहीं हुआ, कछु दिखनार होए, अभी दिखने लगे हुए, अब मैं जाऊँगा, ऐसे जब भागते हैं वहाँ पर, है ना। हम जानते हैं इस बात को, आगे जाकर शायद चित्रपट बदल सकता है, लेकिन हमें विश्वास है कि ये भक्त हैं भगवान के, राधा रानी के, और राधा रानी को देखने को जाएंगे, या तो अपना पाठ खोलेंगे और पढ़ेंगे उसको, है ना। तो यहाँ पर जो कैंप करते हैं ना, यहाँ पर जो नेत्र का उपचार करते हैं, और बम्बई में करते हैं, बम्बई में भी आपको पता नहीं है दिन में 100 ऑपरेशन करते हैं हम लोग फ्री में भक्ति विधान में, और 4 अस्पताल है वहाँ पर तो चल ही रहा है, लेकिन भक्ति विधान मेन अस्पताल में दिन में 100 ऑपरेशन करते हैं हम लोग। तो वो जो लाभ है, दिव्य लाभ, आध्यात्मिक लाभ, और यहाँ का एक ऑपरेशन का लाभ, कोई कंपेरिजन नहीं है। वहाँ सैकड़ों हज़ारों करेंगे आप, लेकिन यहाँ पर आप एक ब्रजवासी को दृष्टि देंगे ना, तो उसका राधा रानी की नज़रों में बहुत ज़्यादा कीमत है। तो हम लोग यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति भी करने आए हैं, ब्रजवासियों को सेवा करके राधा रानी का दिल जीतने के लिए आए हैं। ये हमारा खुद का स्वार्थी अंदर का इच्छा है, लेकिन साथ साथ में ब्रजवासियों का भी कल्याण हो रहा है। परम पूज्य रमेश बाबा जी से महान संत का हमको आशीर्वाद है, उन्होंने अभी अभी बताया कि हम सब आपको आशीर्वाद देते हैं, राधा रानी आपकी इच्छा पूरी करें। तो हमें विश्वास है आज नहीं तो कल होगा, लेकिन हम सब लोग उस दिव्य चमत्कार को देखना चाहते हैं अपनी आँखों से, इसी ज़िंदगी में, इसी शरीर में रहते हुए, चाहे वृद्ध क्यों ना हो जाए, इसी शरीर में रहते हुए अस्पताल बने और लोगों को उसका लाभ हो, और भक्तों को, आप जैसे लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा, और अनंत आशीर्वाद प्राप्त करेंगे हम सब लोग, क्योंकि हर कैंप में देखते हैं ब्रजवासी रो रो के कितना आशीर्वाद देते हैं। जिसका ऑपरेशन पिछले साल हुआ है, वो ढूंढ ढूंढ के आके वो बाजरे की रोटी और मक्खन और छाछ और घर का अचार और गुड़ सब लेके आते हैं, वो डॉक्टर किधर है, वो माता जी किधर है, जिन्होंने हमको लास्ट टाइम सेवा किया था, वो आकर बांटते हैं। इतना कृतज्ञता है इन लोगों के अंदर, तो हम भी उनकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि ये दिव्य धाम राधा रानी। यहाँ पर तो ठाकुर जी भी आते हैं लोटपोट होने के लिए, पूरी दुनिया वैकुंठ से लेकर जितने अनंत वैकुंठ है ऊपर के लगत जगत में, वो सारे लोग भी इधर कृष्ण की चरण के रथ लेने के लिए वृंदावन में आते हैं, चाहे वो देवता हो या ब्रह्मा हो या शिव जी हो या वैकुंठ के विष्णु हो, वो सब लोग भेष बदल कर इस धाम वृंदावन में आते हैं ताकि कृष्ण के चरणों की रज मिलेगी। ऐसा क्यों, वैकुंठ में रज अवेलेबल नहीं क्या? नहीं अवेलेबल है, वैकुंठ में भगवान नंगे पैर नहीं घूमते हैं, भगवान के चरण के तलवों का स्पर्श जमीन से नहीं होता है, हमेशा वो रत्न जड़ित चप्पल पहनते हैं और मखमल बिछा रहता है जहाँ जहाँ पैर रखने वाले हैं, तो कहाँ स्पर्श होगा? एक तो बीच में चप्पल है, उसके बीच में मखमल है, उसके बीच में बाद में जमीन है, स्पर्श होने का कोई गुंजाइश नहीं है, रज बनने का कोई योजना ही नहीं है उधर। यही एक भूमि ऐसे वृंदावन की जहाँ पर भगवान नंगे पैर घूमते हैं, और वो नंगे पैर घूम के भगवान उनकी रज सब लोग लेने आते हैं। लेकिन जिनकी रज लेने के लिए सब वैकुंठों से लेकर वृंदावन में आते हैं, वो स्वयं बरसाने में राधा रानी की रज लेने के लिए आते हैं, उस रज में लोटपोट हो जाते हैं, उसमें आंसू बहाते हैं अपने, और अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं। राधा सुधा रानी में श्लोक है कि उनकी चरण रज प्राप्त करके श्री कृष्ण अपने आप को धन्य अति धन्य मानते हैं। ये भूमि है ये, यहाँ पर वो परम भगवान परात्पर भगवान गोलोकेश्वर, हाँ अखिल ब्रह्मांड गुणगण नायक जो भगवान है, वो यहाँ पर भगवान के रूप में भी नहीं आते हैं, एक सामान्य बालक के रूप में आते हैं, सामान्य बालक के रूप में भी नहीं आते हैं, सखी बनकर आते हैं, साड़ी पहनकर लहंगा फरिया पहनकर आते हैं, चुंदरी ओढ़ के आते हैं, अपनी पहचान को भुला कर आते हैं उनकी चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए। वो भी साधना करते हैं राधा नाम का, वो भी चिंतन करते हैं राधा के चरणों का, हृदय के आंगन में, ऐसी भूमि है ये। इस भूमि में कोई राक्षस नहीं आया है, कंस को राधा रानी ने परास्त कर दिया है, कंस यहाँ पाके कन्या बन गया था, इससे महाप्रतापी राधा रानी है, वृषभानु कन्या राधा रानी है। जो कंस के साथ और कंस के चेलों के साथ भगवान को भी युद्ध करना पड़ा, अब भगवान के ऊपर उसने आक्रमण किया कई बार अपने चेलों के साथ, कभी बकासुर को भेजा, कभी अरिष्टासुर को भेजा, कभी इसको पुतना को भेजा, कभी उसको भेजा, लेकिन वही कंस जो डरा हुआ था लेकिन फिर भी रोज किसी एक को भगवान के ऊपर आक्रमण करने को भेजता था, लेकिन राधा रानी के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया उसने। एक ही बार ढूंढते ढूंढते आया था कृष्ण को, कन्या बन गया, 6 महीना कंडे लिपवाए उससे, उसके बाद में डरा था वो, राधा रानी के चरणों में गिरा, कभी कृष्ण के चरणों में गिरा है, सुना है क्या आपने? कंस आया और गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में गिरा, बचाओ मुझे, ऐसा बोला कभी नहीं। वो तो मारने के लिए कोशिश करता था उसके लिए, लेकिन वही कंस चक्रवर्ती सम्राट यहाँ पर आकर राधा रानी के, बालिका राधा रानी के चरणों में गिरा है रोते रोते, राधा रानी इस भयंकर संकोच से मुझे मुक्त करो, मैं कन्या बना हूँ, क्या मुँह दिखाऊंगा मेरे पत्नियों को, मेरे सेनापतियों को, मेरे राक्षसों को, अरिष्टासुर को, और इसको क्या मुँह दिखाऊंगा मैं, कहीं का लायक नहीं रहेगा मैं, यहाँ पर भी मुझे संकोच है, जाने में भी संकोच है, मुक्त करो। तो राधा रानी उंगलियाँ नचाइए, याद रखना दोबारा आओगे तो परमानेंट कन्या बना दूंगा, छलांग लगा दो कुंड में, छलांग लगाइए, पुरुष शास्त्री प्राप्त किया है, ऐसा भागा है मथुरा तक, पीछे मुड़के भी देखा नहीं है, क्या बताएं। कभी महारानी का मन अगर चेंज हो गया तो परमानेंट कन्या बनना पड़ेगा, ऐसी भूमि है ये। ये कथा विस्मय कथा के रूप में गर्ग संहिता में वर्णन आता है इसका। जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया था तो भगवान के चमत्कारी लीलाओं के विषय में चर्चा हो रही थी, तभी बहुत बड़ी लीला है उसके अंदर ये कथा बताई गई थी कि वृषभानु की कन्या कैसी महाप्रतापी कन्या है। अरे इसको ताने मत देना, उसको बहिष्कृत करने की बात मत करना, इसकी वजह से तुम लोग सुरक्षित हो, तुम्हारे धाम में कोई राक्षस नहीं आ रहा है। तो ये कथा सुनाई थी कंसनी गोपी की, मुटल्ली गोपी कहते हैं उसको, मुटल्ली गोपी, कंस यहाँ मुटल्ली गोपी बन गया था, उसको मेहनत करवाई थी सब गोपियों ने। ऐसी राधा रानी की भूमि है ये जहाँ पर हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये हमारा परम भाग्य है। यहाँ पर 9 करोड़ लोग साल में आते हैं दर्शन करने के लिए, उसमें से आप लोग हम लोग मिलकर गिने चुने कुछ सैकड़ों लोग हैं, 500-600 लोग जो सेवा करने का अवसर प्राप्त करते हैं यहाँ पर, बाकी सब लोग आके हैं दर्शन करते हैं चले जाते हैं। और यहाँ पर भगवान जी भी पहुँचता है, वो नहीं तो वृंदावन मथुरा तक ही पहुँचता है, वहाँ से ही उसको विदा कर देते हैं भगवान। उसमें से कुछ छांटे हुए स्पेशल लोग हैं तो यहाँ पर 9 करोड़ संख्या में आते हैं, और 9 करोड़ में भी आप और हम ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जहाँ पर नित्य सेवा करते हैं धाम की, धामवासियों की और राधा रानी की। ये हमारा परम भाग्य है, कोई अभिमान करने की बात नहीं है, लेकिन हमारा परम भाग्य है, हम योग्य ना होते हुए भी राधा रानी ने हमको इतना सेवा दिया है। तो इसलिए हौसला बुलंद रखो, हाँ जेब खाली रहे दिल भरा रहना चाहिए, है ना। जेब खाली क्या, जेब कभी भर सकती है, कभी भी और खाली हो सकती है, लेकिन दिल भरा रहेगा तो हमेशा भरा रहेगा। इसलिए हौसले बुलंद रखो, राधा रानी को प्रार्थना करो, उसमें हमको चुकना नहीं चाहिए। जेब खाली रख के हृदय भर के राधा रानी को रोज प्रार्थना करो, राधा रानी आप अस्पताल बनाइए, हमको सेवा करना है आपका। जरूर किसी प्रामाणिक भक्त की भोली भाली है, वो हृदय की बहुत भोली है, वो सिंपल हार्टेड है, हाँ जो पापी व्यक्ति को भी अगर रोया एक बार तो बिगल जाती है वो। तो अभी हम अगर इतने प्रामाणिक रूप में सेवा कर रहे हैं, आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करने में चुको नहीं, रोज प्रार्थना करो कि अस्पताल बनना चाहिए। आप लोग प्रार्थना रोज पढ़ते हो ना, वो अगर आपकी इच्छा हो वगैरह, रोज पढ़ते कि बंद कर दिया, पढ़ते ना, रोज दिल से पढ़ो, गिड़गिड़ा के पढ़ो, हाथ जोड़ कर पढ़ो, आँखों में आंसू लेकर पढ़ो, हफ्ते में एक बार कम से कम जाओ और वहाँ पर मत्था टेक के आओ कि राजा रानी आपकी सेवा में हम चाहते हैं कि अस्पताल बने, क्योंकि ये भूमि जो है ना बहुत पवित्र है, यहाँ पर देवताओं को प्रवेश नहीं है, रात्रि का निवास का अरेंजमेंट नहीं है, नो बुकिंग अवेलेबल, हाँ सब लोग दिन में आके चले जाते हैं, केवल गणेश जी काम्यवन में, शंकर पार्वती सब ब्रज में, उन्हीं को यहाँ पर निवास है, और किसी देवता को निवास नहीं है। ब्रह्मा को निवास है पत्थर के रूप में, सोचो आप इस बात को। तो हम लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं, यहाँ की रोटी खा रहे हैं, यहाँ का पानी पी रहे हैं, यहाँ का रस आस्वादन कर रहे हैं, इतनी कृपा प्राप्त कर रहे हैं, अनंत जन्मों का पुण्य है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए नेकी से काम करो, दिल से प्रार्थना करो, और इस धाम की महिमा को वर्णन करने के लिए मैंने एक लीला बताने का आपको निर्णय लिया है, तो उसको आप ध्यान से सुनिए। भगवान है ना इस धाम में, जो बरसाना धाम है, इसमें वो कृष्ण के रूप में भी नहीं आते, हमेशा सखी बन के आते हैं। अरे जो भी आता है यहाँ पर, सब लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, शिव जी आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, देवता सब लोग आते हैं, नंगे पैर आते हैं, अपनी चप्पल ब्रज के बाहर उतारते हैं, अपने वाहन ब्रज के बाहर पार्किंग करते हैं उसको, और सब नंगे पैर चल के राधा रानी के धाम में प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन आने के पहले उधर एक और एक क्या बोलते हैं उसको, टोल नाका है, उसमें सबको ड्रेस चेंज करना पड़ता है, सखी बनना पड़ता है, फिर प्रवेश करते सब लोग सखी बनकर, कृष्ण केवल नहीं सारे देवता लोग। और कृष्ण तो आए दिन यहाँ पर किसी ना किसी बहाने से आते हैं सखी बनकर, अरे राधा रानी के बिना रह सकते नहीं वो नंदगांव में, तो कभी चूड़ियां बेचने वाले बनकर आ रहे हैं, कभी माला बेचने वाले बनकर आ रहे हैं, कोई बने मालिन कोई बने ढाड़िन, कोई झाड़ू लगाने वाली बनकर आ रही है, कोई मेहंदी वाली बनकर आ रही है, कभी कभी हाथ पड़ने वाली हस्त सामुद्रिक होता ना वो क्या बोलते हैं उसको, हाथ पड़ने वाली बनकर आती है, कभी क्या क्या बन के आती है, हजार तरीके से आती है। तो एक बार क्या हुआ, राधा रानी इतनी नम्र है, इतनी भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं वो राधा रानी, फिर भी एक चतुरानना करके गोपी है, चतुरानना उसका नाम है, उसने गर्ग मुनि से शास्त्र सीखा था, तो वो नम्र होकर उस सखी के पास में आती, सखी मुझे बताओ तुम तो गर्ग मुनि से भी शास्त्र सुनी हो, तुमको पता होगा ऐसा कोई उपाय जिससे मैं मेरे प्रियतम को हमेशा हृदय में बना के रखूँ, तो उसके चरणों में अपनी सेवा बना के रखूँ। तो वो जो चंद्रानना तो चंद्रानना गोपी जो है वो बताती है कि अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति आपके अहित्व की भक्ति अगर बनी रहनी चाहिए तो आपको तुलसी देवी का व्रत करना चाहिए। फिर वो उसको विस्तार रूप में तुलसी देवी का व्रत सुनाती है, और राधा रानी वो तुलसी का व्रत करती है, फिर तुलसी महारानी दर्शन देती है और आशीर्वाद देती है कि आपका व्रत पूरा हुआ है, और इस व्रत के फल के रूप में मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी अहित्व की भक्ति ब्रजेंद्र नंदन के प्रति बनी रहे। इसके बाद ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है वो राधा रानी की प्रेम की परीक्षा करना चाहते हैं, तो वो गोप सुंदरी बनकर आते हैं। हाँ अभी देखो शुरुआत में गर्ग मुनि क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसबान करके भ्रमरों की तृप्ति नहीं होती है, भंवरों की तृप्ति नहीं होती है, वैसे भक्तों की राधा और कृष्ण के बारे में चर्चा सुनकर कभी तृप्ति नहीं होती, उनकी प्यास बढ़ती रहती है। और ये कहकर वो लीला सुनाने आरंभ कर रहे हैं कि गोप देवी अभी बरसाने में आ रही है। ये कथा जो है ना सब लोगों को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, इसको नींद आ रही है तो खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन चिंतन करते हुए एकाग्र होकर सुनने की कथा है, ऐसी टाइम पास कथा नहीं है। ठीक है, कैसे गोप देवी आ रही है, पेरेंट्स और नुपुरों की झनकार हो रही है, कमर में जो कटी करधनी है उसकी मधुर खनखनाहट हो रही है, उंगलियों में जो अंगूठी है उसकी अपूर्व शोभा सब जगह प्रकाशित हो रही है, उनके रत्न जटित कंकण हैं, बाहुबंद रत्नों से भरे हुए हैं, वक्षस्थल पर मोतियों की माला है, कुशलतापूर्वक बालों का श्रृंगार किया है, और चलते हुए मोती की नथनी जो है ना वो हिलडुल रही है, उसका प्रकाश गालों पर गिर रहा है, काने के कुंडल का प्रकाश गालों पर गिर रहा है, वो सबको ऐसे मिक्स होके उसका प्रकाश करते हुए हिलडुल के हुए आ रही है, उसके शरीर से दिव्य आभा प्रकाशित हो रही है। और करते करते वो प्रवेश करती है तो वृषभानु महल को देखती है, जो हम जाते हैं ना मंदिर वो वृषभानु महल है, वहाँ पर देख के क्या देखती है, यही एक जगह है जहाँ पर मुझे वृषभानु महल के विषय में विस्तार रूप में वर्णन मिला, इतना आनंद आया पढ़ के, मैंने बार बार पढ़ा उसको, क्या वर्णन है, वृषभानु महल के चार दरवाजे पर काजल वर्ण वाले गजराज विराजमान थे, हार और चवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले मन की गति से भागने वाले अश्व वहां पर विराजमान थे दरवाजे पर वृषभानु बाबा के महल पे। फिर सवत्सा यानी जिनके बच्चे हैं ऐसे गौवें और धर्मधुरंधर वृषभ वृंद यानी बैल उस भवन को सुशोभित कर रहे थे अपने होने से, और गोपालक जो गौपाल करने वाले ब्रजवासी है बंसी बेद धारण करके गीत गाते हुए नजर आ रहे थे। तो फिर वो गोप देवी बाहर का दर्शन करके अंदर आई, अंतपुर कहते हैं ना उसको, अंदर का प्राइवेट एरिया, तो क्या देखते हैं, कपाट और खंभे जो थे वो कोटि सूर्यों के समान प्रकाश फैला रहे थे, रत्न मंडित आंगन सब जगह फैला हुआ था, रत्न स्वरूपा ललनाएं सब जगह इधर उधर घूम रही थी, मनोहरणी गोप सुंदरियां वीणा ताल मृदंग बजा रही थी, राधिका का गुणगान कर रही थी, अंतपुर में दिव्य विशाल उपवन की छटा थी, सब जगह पर बगीचे बने हुए थे, अनार मंदार नींबू कुंद के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, केतकी मालती माधवी की लताएं लहर रही थी। वहां श्री राधा रानी का प्राइवेट निकुंज था, वहां की शोभा का वर्णन हो रहा है, कल्प वृक्षों के समान वहां सुगंध भरी हुई थी, जहां जाओ वहां सुगंध ही सुगंध था, मधु पीकर भवरे मतवाले हो गए थे, शीतल मंद सुगंधित वायु सहस्त्रदल कमलों के परागों को यहाँ वहाँ बिखेर रहे थे, समझा, मंद शीतल सुगंधित, हवा का तीन गुण होता है, वो मंद मंद बहती है वो जमुना जी की ठंडक बाष्प को लेकर चलती है, और साथ में कमल दल, मालती, केदार के जो पुष्प हैं उसके पुकेशर लेकर राधा और कृष्ण के त्वचा को जो है ना आनंद देती है, शीतलता मधुरता का और मंद मंद वायु का। नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस पक्षी, शुक यानी तोता, ये सब लोग मीठी मीठी आवाज में कुंजन कर रहे थे। फूलों की हजारों शैयाएं वहां पर थी, पानों पानी की हजारों नहरें वहां बह रही थी, शुद्ध स्फटिक प्रकाशित जल वहां पर नहरों के रूप में बह रहा था। मेघ मंदिर में सैकड़ों फुवारे घूम रहे थे, अति आकर्षक श्रृंगार के साथ करोड़ों सुंदर मुखी सखियां कुशलता से राधा की सेवा में रत थी। राधिका राज मंदिर में टहल रही थी। ये सब सुंदर वातावरण में राधिका मंद मंद गति से गजगामिनी के रूप में वहां पर टहल रही थी। राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्र से सुशोभित था, सब जगह केसरिया रंग के वस्त्र जो है ऐसे लहरा रहे थे रत्न जड़ित। और भूमि पर क्या स्थिति थी देखिए, अभी हमने अभिषेक किया तो इधर पुष्प गिरे ना, कितने थे, छोटे से थे। वहां पर पर्वतीय पुष्प, हाँ, और कौन से वृक्ष, पर्वतीय पुष्प, जल में आने वाले जलज पुष्प, और स्थल में आने वाले स्थल पुष्प, यानी कि भूमि से आने वाले, जल से आने वाले और पर्वत पे आने वाले, ये सारे फूलों की इतनी वर्षा हो गई थी कि जो भी चल रहा है उसके एड़ी तक पांव उसमें घुस रहा था। समझ में आ पाया, आप चलेंगे उसके अंदर तो आपका पैर दिखेगा ही नहीं, एड़ी के ऊपर ही दिखाई पड़ेगा, इतने सारे फूलों की वहाँ पर भूमि पर वर्षा हो रही थी। और मालती के मकरंद, यानी मकरंद का मतलब क्या होता है, मधु, मधु यानी हनी, तो क्या बोलते हैं आप, शहद बोलते हैं ना, तो मालती के फूलों के अंदर से शहद के ऐसे झरने बह रहे थे सब जगह पर मंद मंद तरीके से। फिर करोड़ों चंद्र के समान कांतिमती, कोमलांगी, कृष्णांगी राधा रानी धीरे धीरे अपने चरणारविंदों का संचालन करके चल रही थी। उनकी चाल देखकर ये सखी जो है कृष्ण भगवान बनकर आए, बड़ी मोहित हो गई। गोप सुंदरी गोपांगना गोप देवी का दर्शन राधा ने किया, उसका सौंदर्य देखकर राधा स्वयं आश्चर्यचकित हो गई। सारी गोपांगनाएं क्या कहते हैं, हतप्रभ हो गई, मतलब उनका खुद का तेज नष्ट हो गया। जैसे होता है ना कि आकाश में जब चांद आता है ना तो चमचमाते तारे भी कुछ नहीं नजर आते हैं, अंधकार जो होता है अमावस की रात में तो तारे बहुत चमकते हैं, उनकी एक शोभा रहती है, लेकिन चांद आते ही सारे तारों की शोभा समाप्त हो जाती है। वैसे ही ये जब श्यामा सुंदरी वहाँ पर आई, श्यामा सखी, तो सारी गोपियाँ जो सज धज खड़ी थी, सुंदर मुखी थी, उनका तेज हतप्रभ हो गया। राधा रानी इस गोपी को देखकर इतनी प्रभावित हो गई, इतनी प्रभावित हो गई राधा रानी ने, उसको बड़ा दीर्घ आलिंगन दिया, गाढ़ आलिंगन दिया, बहुत देर तक आलिंगन दिया, प्रेम के भरे उसके हृदय में न जानो कैसा प्रेम प्रकट हो रहा था। जैसे उनको श्याम सुंदर के प्रति प्रेम होता है अनुभव, उसी प्रकार का प्रेम उनको इस सखी को देख के हो रहा था। और बहुत देर तक आलिंगन दिया, उसके बाद में भावों में भर दिया और दिव्य सिंहासन बिठाया, पंचोपचार से सत्कार किया, आदर किया, सुंदर पूजन किया उसका। फिर राधा बोली, हे प्रिय सखी, शीघ्र नाम बताओ, तुम्हारा आना हमारा महान सौभाग्य है। वो नगर धन्य है जहाँ पर तुम रहती हो, तुम्हारी बांकी चितवन, सुंदर दीप्ति मतलब प्रकाश आभा, मधुर वाणी, मनोहर स्मित, मोहक चाल, और तुम्हारी आकृति श्रीपति के समान है, मुझे श्रीपति की याद दिला रही है, मतलब श्री कृष्ण की याद दिला रही है, मेरा मन तुमने हर लिया है। तो गोप देवी कहती है कि मैं गोकुल में नंद भवन के उत्तर दिशा में रहती हूँ, वहाँ मेरा निवास है, मेरा नाम गोप देवी है, ललिता के मुख से मैंने तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी के विषय में सुना है, मैं आपको दर्शन करने आई हूँ। जहाँ लवंग लताओं की सुगंध छाई हुई है, मधुपों की यानी भंवरों की मधुर गुंजन से युक्त कमल पुष्प खिल रहे हैं, हर एक कमल पुष्प के पास सैकड़ों मधुर मधुप जो हैं, वो जो भंवरे हैं वो गुंजन कर रहे हैं, ऐसे कमल पुष्पों से यहाँ पर वन खिल रहे हैं, ऐसा आपका सुंदर नगर देखकर मैं धन्य हो गई। आपका नगर जो है वो अमरावती यानी इंद्र की राजधानी जो है ना, उससे भी श्रेष्ठ है। तो ऐसा होने के बाद में राधा रानी और वो गोपी जो है श्यामा गोपी, वो गेंद खेलने लगी, फूल से बने हुई पुष्प कंदुक कहते हैं उसको, ऐसे गेंद से खेलने लगी। बहुत दिन तक उन्होंने, बहुत समय तक उन्होंने परस्पर प्रीति का अनुभव करते हुए वन में राधा रानी ने अपने निकुंज में विचरण किया। उसके बाद गोप देवी कहती है, अभी संध्या हो गई है, मैं जाती हूँ, देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए, कल फिर आऊँगी। राधा रानी वो मैं कल फिर आऊँगी, अभी जाऊँगी, ये सुनकर वहाँ पर बेहोश हो गई। सखियों ने उनको जगाया तो राधा रानी की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। रोमांच हर्ष उद्गम भाव से वो गदगद हो गई थी। वृक्ष की तरह जमीन पर गिर पाई। सखियां व्याकुल हो गई। चंदन के पुष्प के इत्र छिड़के और उनको हवा किया उन्होंने, फिर वो जग गई। फिर गोपदेव ने कहा, चिंता मत करना, मैं अवश्य लौट के आऊँगी। वो दोबारा अगले दिन गोप देवी लौट कर आई। बहुत सुंदर कथा है। और राधा कहती है कि तुम्हारी याद में मैं कल रात भर नहीं सो सकी, कब आओगे कब आओगे, इसी विचार में रात बीत गई मेरी, बड़ी व्याकुल रही। लेकिन जब इस दिन जब गोप देवी को देखा तो बड़ी सुंदर जैसी थी वैसी ही थी वो, लेकिन उसे नाराज लग रही थी वो। तो राधा रानी ने पूछा, क्या बात है, आज तुम नाराज क्यों लग रही हो, इतनी अनसनी क्यों लग रही हो? तो गोप देवी ने कहा, मैं मनोहर साकरी गली से आ रही थी दधी लेकर बेचने के लिए, तो वहाँ पर नंदनंदन, क्या क्या सुंदर नाम, देखो नंद नव तरुण कुमार श्याम सुंदर जी वहाँ से आए और बड़े निर्लज्ज होकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहता है कि मैंने तेरा कर पकड़ लिया है और मैं कर लेने वाला हूँ। समझ में आया आपको, मैंने आपका सुंदर कर पकड़ा है और मैं कर लेने वाला हूँ, मतलब टैक्स लेने वाला हूँ, उसका भी नाम कर है ना। तो उन्होंने कहा कि दही का दान दो। तो गोप देवी बता रही है राधा रानी को कि नाराज क्यों है वो। मैंने कहा, कदापि नहीं, तुम तो स्वयं घोषित करने वाले अधिकारी हो, अपने आप को स्वयं घोषित कर दिया कि मैं अधिकारी हूँ, टैक्स देने वाला हूँ वगैरह वगैरह, मैं बिल्कुल टैक्स देने वाला नहीं है। इतने में जब मैं बहस कर रही थी तो उसने मेरी मटकी फोड़ी, दही खाया, मेरी चादर को उतार लिया ऊपर से और चल पड़ा। मैं इतनी दुखी हो गई, इतना ढीठ लड़का है ये, इतना उद्दंड है नंद का लाला, और जात से ग्वाला, अभी सुनो, जात से ग्वाला, रंग से काला, न धनवान न वीर न सुशील न स्वरूप, कोई योग्यता ही नहीं है। और मैंने सुना है कि तुम उससे प्रेम करती हो, तुम कैसे ऐसे, क्या कहते हैं उसको, तो सुशील ही नहीं है, मतलब उसको कोई सुशीलता ही नहीं है, कोई संस्कार ही नहीं है, कोई व्यवहार का तरीका नहीं है, ऐसे व्यक्ति से तुम प्रेम कैसे कर सकती हो? मैं आपको बता रही हूँ, उसको त्याग दो, वो प्रेम करने योग्य नहीं है, अत्यंत दुर्गुण भरे है उसके अंदर। तो राधा रानी गोप देवी का ये जो अद्भुत क्या आक्रामक स्वरूप देखकर बड़ा चौंक गई। अरे कल तो इतनी मधुर मधुर बातें कर रही थी, मीठी मीठी मधुर वाणी से मेरा दिल मोह रही थी, आज मेरे प्रियतम के बारे में इतनी कठोर वाणी की उच्चारण कर रही है। तो राधा रानी ना कल जो भाव में थी उस भाव में आज नहीं है, ऊपर ऐसा एकदम अलग भाव में आ गई। और अभी क्या क्या कहा ध्यान से सुनो, गोपदेवी ने क्या कहा, रंग से काला, जात का ग्वाला, न धनवान न वीर न सुशील न स्वरूप, किसी योग्यता का नहीं। अभी एक एक बात राधा रानी काट रही है। देखो ब्रह्मा, राधा रानी कहती है गोप देवी, ब्रह्मा शिव और कृष्ण और उत्कृष्ट योग पद्धति से पंचाग्नि का सेवन करते हुए तप करते हैं, अरे इनको चरणों को प्राप्त करने के लिए, जिसकी तुम बात कर निंदा कर रही हो उसके चरणों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव तप करते हैं, दत्तात्रेय शुकदेव कपिल मुनि आसुरी मुनि अंगिरा मुनि इनके चरण के मकरंद के पराग का स्पर्श करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए तप करते हैं। समझ में आपको आया, चरण तो दूर रहे, चरण के वो जो पुष्प है, जो पुष्प के पराग है उसका स्पर्श करना चाहते हैं, उसके लिए तपस्या करते हैं। वे अजन्मा है, वे परिपूर्ण देवता है, लीला अवतार धारी है, सर्वजन दुख हारी है, भूतल भूरी भार हरण हारी है, सुंदर वर्णन कर रही है। वो सत्पुरुष हैं और वो कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वो श्री कृष्ण की तुम निंदा करती हो, तुम बहुत ही धीट और उद्धट हो, उद्भट कहते ना उसको, उद्दंड हो, ऐसे वो कह रही है। अरे ग्वाले, देखो अब एक सुंदर बात कही है राधा रानी ने, अरे ग्वाले सदैव गौ का पालन करते हैं, गौ रस की गंगा में नहाते रोज, इतना गौ रस उपलब्ध है उनके लिए, गौ को रोज स्पर्श करते हैं, गौ दर्शन करते हैं, इसलिए गोपाल ही सर्वश्रेष्ठ जाति है। उन्हें कहा था ना जाति का ग्वाला, तो उस जाति का गौरव राधा रानी ने किया है। फिर कहते हैं, भगवान शिव मोहित होकर जटाजूट होकर हलाहल विष धारण करके भस्म धारण करके मुंडियों की माला पहन के और सर्प धारण करके इसी काले कलुटे के पीछे भागते रहते हैं, पागलों की तरह ब्रज की गलियों में घूमते रहते हैं। सुन रहे हो, जटाजूट होकर हलाल विष धारण करके भस्म कपाल मनी मुंडियों की माला पहन के सर्प धारण करके इसी काले कलुट के पीछे पागलों की तरह ब्रज में दौड़ते फिरते हैं। तुम उन्हें निर्धन कहते हो जो स्वर्गलोक सिद्धलोक मुनिलोक यक्षलोक मरुलोक इसके पालक हैं, नर किन्नर नागों के स्वामी हैं और जिनके चरणों में समर्पित होकर सब लोगों को लक्ष्मी प्राप्त होती है, तुम उसको निर्धन कहते हो? कोई धन नहीं इसे कहते हो? वत्स अघ कालिया बक तृणावर्त शकट पुतना आदि का व्रत करने वाले तुम उसको कहते हो वीर नहीं वो? अरे छह दिन के समय पर अभी तो करवट भी नहीं बदली है, हाँ इस उम्र में इस स्थिति में उन्होंने पुतना जैसे 12 मील लंबी भयंकर राक्षसी का वध किया, उन्होंने केवल स्तन चूस के, कोई शस्त्र चला नहीं, कोई चक्र नहीं चलाया, केवल बाल सुलभ स्तन चूस के उन्होंने इतनी भयंकर राक्षसी का वध किया और तुम कहते हो वीर नहीं हो? अरे मुझे अभी लग रहा है कि तुम्हें वीरता ये क्या है पता ही नहीं है, तुम्हें उसका कुछ परिचय नहीं है और तुम वीरता के बारे में बखान करते जा रही हो कि वीर नहीं है, तुम्हें वीरता क्या है पता ही नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। अरे उनके भक्त उनको ब्रह्म शंकर लक्ष्मी बलराम से भी अधिक प्रिय हैं। भगवान ने एक जगह पर कहा है कि मेरे भक्त जो हैं वो तो मुझे गीता में भी कहा है, शंकर ब्रह्मा बलराम जी मेरे भाई और मेरी पत्नी लक्ष्मी से भी मेरे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, ऐसे भगवान ने कहा है। भक्ति बद्ध यानी भक्तों की भक्ति से बद्ध होकर और मोहित होकर वे भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। हाँ धावत यैव ससंभ्रमः, पागल से होकर वो भक्तों के पीछे भागते रहते हैं, ऐसे हमारे भगवान हैं। तो गोप देवी जो है ना, अभी आप सोच सकते हैं अभी गोप देवी स्वयं कृष्ण हैं, मैं अभी बताते गया तो एक राजा ने क्या क्या बोलते गई और यहाँ पर गोप देवी के अंग में कंपन शुरू हुआ, राधा रानी का प्रेम देखकर वो भाव विवल होने लगे, हाँ अपनी आंखों से अश्रुओं को रोक रहे हैं, अपना कंठ गदगद होने से रोक रहे हैं क्योंकि कैसे दिखाएंगे कि मैं भाव विवल हो रही हूँ, उनको नाटक तो बनाए रखना है अपना। तो वो ना बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक एक बात बोलती जा रही है, गौरव करते जा रही है और वो अपने को कंट्रोल कर रहे हैं कि आंखों से अश्रु ना आ जाए, कहीं मैं कांपने लगूं नहीं, कहीं बेहोश ना हो जाऊं, कहीं स्तंभित ना हो जाऊं, अष्ट विकार ना उत्पन्न हो जाए। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अभी उनको अपने आप में काबू रखना, अपने भाव को नियंत्रण करना मुमकिन नहीं है। किसको? गोप देवी को, जो श्यामा सखी बनकर आए हैं, गोप देवी बनकर आए हैं। फिर वो अभी उसको ना आखिरी बात बोलना है और वहाँ छुटकारा पाना है। वो क्या कहते हैं? तुम्हारी बुद्धि जो है वो बृहस्पति से भी श्रेष्ठ है, तुम्हारी वाणी वेद वाणी से मधुर है, तुमने बुलाया और श्री कृष्ण अगर यहाँ पर आए तो मैं मान लूँगी कि तुम्हारा वो भी सही है और तुम भी सही हो। अभी कैसे ना अधिक देर रहेगी वहाँ पर वो तो खुद ही रो पड़ेगी, तो उसको वहाँ से जाना है, तब जाने का बहाना कैसे बनाएंगे? तो वो बोले मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ, अगर तुम्हारा कृष्ण पर सच्चा प्रेम है और कृष्ण सही व्यक्ति है तो तुम्हारा चिंतन मात्र से वो यहाँ पर आना चाहिए, तब मैं मान लूँगी कि तुम्हारी भक्ति और प्रेम सही है। तो उस समय राधा रानी देखो क्या है ना, राधा रानी तो नम्र है, कोई कह रहा है उसको कि तुम उसको बुलाओ और मैं देखता हूँ कि वो आते कि नहीं, तो वहीं पर वो हाथ जोड़ कर बैठ गई और उसको टोका नहीं उसने और उसके लिए बात काटने का प्रयास नहीं किया, उसने कहा ना कि मैं स्मरण करूंगी, तो बैठ गई हाथ जोड़कर आंख बंद कर बैठ गई और ध्यान किया, नेत्र ध्यान रत हो गए, निश्चल हो गए और उस ध्यान से उसके अंग अंग में श्वेत निर्माण हुआ, दिव्य श्वेत जल निर्माण हुआ और मुख पर अश्रु धाराएं बहने लगी। वो स्थिति देखकर कि अभी इसकी आंख बंद है और वो भावमग्न हो गई, गोप देवी वहां से पलायन करती है और तुरंत वहां जाकर अपना वस्त्र उतार दिए, मतलब श्यामा सखी, और श्री कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं। और श्री कृष्ण प्रकट होते ही राधा रानी आंखें खोलती है, क्यों आंखें खोलती है? आंखें तो बंद है ना, कैसे पता चला श्री कृष्ण आ गए? आइडिया आपको? भगवान राधा रानी सभी ब्रजवासी सभी गोपियों इनके अंग से सुंदर सुगंध आती है और वो सुगंध से ही पहचान लेती है। जब राधा रानी का जन्म हुआ था तभी भी उसकी आंखें बंद थी ना, कैसे आंखें खोली उसने? जब श्री कृष्ण भगवान ने बाल रूप में घुटन चलते चलते जब प्रवेश किया अंतपुर में तो उनके सुगंध से ही वो राधा रानी पहचान गई कि हमारे प्राणनाथ आ गए और आंखें खोलकर किल्लोड़ किया उन्होंने। उसी प्रकार से आंखें बंद कर ध्यान रहता है वो, मग्न है, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण आए तो आंखें खोल दी उसने। और श्री कृष्ण ने कहा कि जब मैं आ रहा था ना, कोई सखी रूप धारण करके यक्षी आसुरी मायावानी, मायावादी, माया मायाविनी, मतलब क्या कहते हैं उसको, राक्षसी प्रवृत्ति वाली एक लड़की यहाँ से गई। मैं उस जाते हुए उसको देखा, मैंने विचार किया कि शायद वो तुम्हारे साथ ही थी, तो मैं तुमको चेतना में दे रहा हूँ ऐसे नागिन का संग मत करना कभी, ऐसे वही बता रहे हैं। इस तरह से तुलसी का व्रत करके जो श्री कृष्ण के ऊपर अविचल भक्ति राधा रानी ने सिद्ध की है यहाँ पर, उसकी परीक्षा में राधा रानी पास हो गई। श्री कृष्ण भगवान ने प्रयास किया कि परीक्षा लूँ, लेकिन परीक्षा लेते लेते परीक्षक जो थे वो खुद ही बेहोश हो गए, मतलब खुद ही भाव विभोर हो गए, अपने आप को काबू में रख नहीं पाए। विद्यार्थी ऐसे हैं जिसकी परीक्षा ले रहे, वो उन्होंने परीक्षक को ही चितपट कर दिया। और श्री कृष्ण ने अपनी हार मानकर गोप देवी का स्वरूप छोड़कर वो अपने प्रकट रूप में आए और राधा रानी को संग दिया उन्होंने। ऐसी अनंत लीलाएँ यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण की होती रहती है, जिसमें कृष्ण जो है वो सखी बनकर आए हैं, कभी चूड़ी बेच रहे हैं, कभी ब्रह्मचारी बनकर हाथ देखने वाले बनकर आए हैं, कभी बाबा बनकर आए हैं, और कितना चमत्कार करते हैं। तो तात्पर्य कहने का यह है कि ये अद्भुत भूमि है, यहाँ की लीलाओं को कहने के लिए भी और सुनने के लिए भी हमारे पास योग्यता नहीं है, फिर भी हमको यहाँ पर सेवा मिली है, तो धन्यवाद देना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, प्रामाणिकता से, हृदय से, नेकी से यहाँ पर सेवा करनी चाहिए। फिर राधा रानी उनके अंदर जो छुपा हुआ है, वो राज भरा जो दौलत है, उनकी ऐश्वर्य है, वो हम सबको वो प्रदान करती है। उनके हृदय में क्या भरा है, कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम भरा हुआ है, उसका सागर है राधा रानी, प्रेम नवनीत सागर है, वो हमको प्रदान करेगी, कृपा करेगी, और हमारा ये छोटा सा जो नगण्य तुच्छ जीवन है वो भी धन्य हो जाएगा। बोलो श्रीमती राधा रानी की, श्री बरसाना धाम की जय, जय जय श्री राधे।